अगला मसला है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में किसी नबी या वली, मुहद्दिस या फकी, इमाम या आलिम की इत्तबा का तसव्वुर सरासर गुमराही है। इसकी दलील, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाहु अन्हो रिवायत करते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, हम यहूदियों से कुछ बातें सुनते हैं जो हमें अच्छी लगती हैं, क्या इनमें से बात ज़्यादा अच्छी लगने वाली बातें लिख लिया करें? सवाल देखिएगा, यानी यहूद से सुनते हैं और उनकी कुछ बातें अच्छी लगती हैं तो क्या लिख लिया करें? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, क्या तुम अपने दीन के बारे में शक में मुबतला हो? क्या शक है कि ये नाकिस है? यानी वो बात जो उनको बताई थी उनके पास और हमारे पास नहीं है। जिस तरह यहूदों ने सारा अपने दीन के बारे में शक में पड़े थे, हालांकि मैं एक वाज़े और रोशन शरीयत लेकर आया हूँ, अगर आज मूसा अलैहिस्सलाम भी ज़िंदा होते तो मेरी पैरवी किए बगैर इनके लिए कोई चारेकार ना होता। मुसनद अहमद और बेहकी की रिवायत। मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र क्यों आया? क्योंकि उन पे तो रात उतरी थी कि आज अगर मूसा को भी तुम फॉलो करने लगोगे तो तुम सही तरफ नहीं जाओगे और मूसा भी मेरी पैरवी करेंगे। देखिए ये कितनी बड़ी दलील है इस बात की। जो लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, इस्लाम की भी बातें ले लो, दूसरों की भी ले लो, हर मज़हब की अच्छी बातें ले लो, हर्ज क्या है, चलो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? कहा नहीं, क्या तुम्हें अपने दीन के अंदर नक्स का यकीन है? ये तो ऐसे ही ना कि जैसे आप किसी जगह जाएं, मिसाल है कि आप मेडिकल कॉलेज में दाखिला लें, ओके, आपको वो पढ़ाएं, उनका एक अपना तरीक़ेकार होगा, उसके हिसाब से चलेंगे, तो आप कहें कि नहीं मुझे लगता है कि वो जो दूसरा जो एक मेडिकल कॉलेज है ना दूसरे शहर में, कुछ चीज़ें उसकी भी मैं अपने साथ शामिल कर लूँ। भाई वो क्यों? नहीं मेरा ख्याल है कि उनका ज़्यादा स्ट्रांग है करिकुलम और आपका कम है। नहीं, हर एक का एक तरीक़ेकार होता है। हो सकता है जो चीज़ इन्होंने आपको अभी नहीं बताई वो अगले साल में बता दें, इनको लग रहा होगा कि अभी आपको नहीं बतानी वहाँ बतानी बेहतर है। तो जब इंसान जम जाता है ना एक चीज़ के साथ तो खुद ब खुद ग्रेजुअली ग्रेजुअली चीज़ें आती हैं। ये उन लोगों के लिए भी एक बहुत ही बड़ी नसीहत है कि जो टुकड़ों में दीन मुख्तलिफ जगहों से ले लेते हैं, जहाँ बैठे दीन के नाम पे, बाज़ लोगों का सिर्फ काम ही क्या होता है, घूमना फिरना, ये क्या है उधर के, यानी उनका दीन क्या है कि मुख्तलिफ जगहों से दीन को लेना, और दीन को कैसे लेना, मसलन कोई एक सॉलिड नॉलेज नहीं लेना, यानी एक दफ़ा ए टू जी पूरा कुरान पढ़ लेना इंसान तो उसकी सोच डिवेलप होती है, उसके बाद इंसान किसी से भी कुछ सुनता है उसको फ़ायदा होता है। लेकिन ये जहन में रखिएगा कि जब तक आप खुद एक दफ़ा कुरान पाक से नहीं गुजरते एज अ स्टूडेंट और तालिब इल्म, आप 10 जगह से भी सुने ना, हफ्ते के 7 दिन है, हर दिन आप शहर के मुख्तलिफ हिस्से में जाएं, एक दिन एक जगह जाके एक आलिम से कोई बात सुने, दूसरी जगह दूसरे से जाएं, तीसरे दिन तीसरे से जाएं, एंड ऑफ द डे आपको पता क्या होगा? तकाबुल, वो ऐसे करता है ये ऐसे करता है, वहाँ ऐसा होता है ये ऐसा होता है। तजवीद देख लें, आप 2 लोगों से तजवीद नहीं सीख सकते, ग्रामर तो आप बिल्कुल 2 लोगों से नहीं सीख सकते, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि बस एक से सीखने होते हैं। तो लिहाजा जब लोग बहुत ज़्यादा घूमते हैं, ठीक है शौक अच्छी चीज़ है, वैरायटी अच्छी चीज़ है, इसका ये नहीं मतलब कि आप किसी एक को सुन रहे हैं तो दूसरे को ना सुने, लेकिन एक दफ़ा अपने नॉलेज को स्ट्रॉन्ग कर लें, जमे हैं तो जम जाएँ, लगे हैं तो लग जाएँ, और देखें 40, 50, 60, 70, 80 साल की ज़िंदगी हो जाए किसी की, और एक दफ़ा रब की बात ही ना पूरी समझाओ। अभी तो हम देखें कि ये छोटी सी बुक पढ़ रहे हैं कि सुन्नत के मसाइल क्या हैं, अगर इस वक्त हम बुखारी शरीफ खोल के बैठे, कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक दफ़ा ए टू जी पूरी सही बुखारी पढ़ी है, सही मुस्लिम पढ़ी है, इब्ने माजा पढ़ी है, तिर्मिज़ी पढ़ी है, सियासत्ता सिर्फ 6 किताबें, हम में से किसने देखी भी है पूरी? हम हक रखते हैं अल्लाह के नबी की उम्मती कहलाने के? हम किस मुंह से अपने आप को अल्लाह के नबी की उम्मती कहें और कल क़यामत के दिन कहें कि वो हमारी सिफारिश करें? अल्लाह के नबी ने अगर कल पूछ लिया, अच्छा सही बुखारी पूरी पढ़ी थी? नहीं, वो तो पता ही नहीं वो थी कितनी। हमसे कोई नाम पूछ ले ना, इमाम बुखारी का नाम क्या था? अभी देखिएगा आपके भी सर नीचे जाएंगे, कब पैदा हुए, किस दौर में पैदा हुए, कितनी टोटल उनकी रिवायतें थी, कितने वॉल्यूम थे उनकी किताबों के, मुस्नद अहमद के कितने वॉल्यूम हैं। मैं तो कहती हूँ जिन आइमा कराम की तरफ लोग नस्बतें देते हैं उनको भी नहीं जानते, इमाम अबू हनीफा के नाम कोई बता दे किस दौर में पैदा हुए, कहाँ हुए, और इसके बरक्स अगर आपसे पूछूं कि शहर का कोई मारूफ सिंगर उसका नाम बताएं, उसके एल्बम्स के नाम आते हैं, कितनी उसकी मूवीज़ हैं, कितनी वीडियोज़ हैं, किसी एक क्रिकेटर का नाम बता दें कितने मैच हुए, वो तो एक एक छक्का याद होता है कि किसने कब लगाया था और कहाँ लगाया था। तो फिर बात तो यही है, कि जिस चीज़ से इंसान को मोहब्बत होती है वो वही काम करता है। अल्लाह ताला हमें अल्लाह के नबी की सुन्नत और अहादीस को समझने, उससे मोहब्बत करने और फिर उसको ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगली रिवायत है हज़रत जाबिर रजी अल्लाह अन्हो से। रिवायत करते हैं कि उमर बिन ख़त्ताब रजी अल्लाह अन्हो तौरात लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया है अल्लाह के रसूल, ये तौरात है। आप खामोश रहे। हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हो तौरात पढ़ने लगे तो रसूलुल्लाह का चेहरा मुबारक गुस्से से बदलने लगा। हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो ने यह सूरत हाल देखी तो कहा, ए उमर, गुम करने वालियाँ तुझे गुम पाएं। ये मुहावरा हमारे यहाँ जैसे कहते हैं ना, तेरा बेड़ा तर जाए, यानी कोई बददुआ भी नहीं होती लेकिन एक जुबान का है ना, तो इस तरह अरब लोग कहते थे तुम्हें गुम करने वालियाँ गुम करें। इबास कहते तुम्हारी माँ तुम्हें गुम करे, यानी ऐसे एक प्यार का एक अंदाज होता था किसी को आगाह करने के लिए। रसूलुल्लाह के चेहरे की तरफ नहीं देखते। हज़रत उमर रजी अल्लाह उन्होंने रसूलुल्लाह के चेहरे मुबारक की तरफ देखा तो कहा, मैं अल्लाह और उसके रसूल के गुस्से से अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूँ। हम अल्लाह के रब होने पर, इस्लाम के दीन होने पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पर राजी हैं। इसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, अगर आज मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए और तुम लोग मेरी बजाय इनकी इत्तेबा शुरू कर दो तो सीधी राह से गुमराह हो जाओगे, और अगर मूसा ज़िंदा होते और मेरी नबूवत का ज़माना पाते तो वो भी मेरी इत्तबा ही करते। इसे दारमी ने रिवायत किया। बहुत वाज़े रिवायत है कि अल्लाह के नबी उमर फारूक के हाथ में। देखिए मैं एक एक लफ्ज़ पे ज़ोर इसलिए दे रही हूँ कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आला, और उमर वो शख्स है कि जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, हर उम्मत में एक साहिबे इल्हाम शख्स होता है और मेरी उम्मत का शख्स वो उमर है। आपने फरमाया कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं, अगर मेरे बाद कोई शख्स नबी बनता तो वो उमर बनता। देखिए खलीफा अबू बकर बने लेकिन नबी बनने की क्वालिटीज़ उमर में ज़्यादा थी। वो शख्स, उसके हाथ में चीज़ क्या है, तौरात, जो कुरान पाक के बाद सबसे ज़्यादा मारूफ और मशहूर किताब, कमेंडमेंट्स, और उसके अंदर कितने हुक्म थे। नबी बेहतरीन, सहाबी आला, किताब बेहतरीन। कोई उन्होंने राजस तो नहीं था पकड़ा हुआ, कोई फिक्शन तो नहीं था। गुस्सा क्यों आया अल्लाह के नबी को, सोचिए। जब अल्लाह के नबी के सामने उमर के हाथ में तौरात का सफ़ा, जो अल्लाह की उतारी हुई थी, वो नहीं चल सका, तो आप बताइए कि आज के दौर में अल्लाह के नबी की हदीस या आपकी किसी सुन्नत के मुकाबले में किसी इमाम का फतवा, किसी मुफ्ती की बात, किसी दूसरे इंसान की बात कैसे चल सकती है। आज लोग जब किसी भी का नाम लेके आगे बात पेश करते हैं कि जी ये फलां इमाम की, और उसको कह दे कि देखें ये बात बहुत अच्छी है आपके सामने, लेकिन देखिए कि इससे दूसरी तरफ आपको ये हदीस भी तो मिल रही है। और लिटरली ऐसा हुआ, यानी किसी मस्जिद में नमाज में लोग जाते थे तो वहाँ एक ख़ास तरीके से नमाज़ पढ़ाते थे, तो कोई अल्लाह का बंदा था, उसने कहा कि ये सही बात नहीं है, और मैंने खुद हदीस पढ़ी है बुखारी में कि अल्लाह के नबी सल्लम तो ये काम करते थे जो आप नहीं करते। खैर ये घर गए, इन्होंने अपनी किताब पकड़ी जो बुखारी की थी, उसमें सही बुखारी में लिखा होता जिसको कोई झुठला ही नहीं सकता, जाके उनको दिखा दी इमाम साहब को मस्जिद में कि देखें आप कैसे कह सकते हैं कि ये नहीं करना, ये तो हदीस में लिखा हुआ है। देखी एक नहीं कितनी हदीसें थी, सब सुन ली, कहा अब क्या इरादा है। कहा बात सारी ठीक है लेकिन हम अपने इमाम के फतवे से आगे नहीं जा सकते। अब ये क्या है, आगे आएंगी बातें तो आप देखेंगे कि ये अल्लाह और उसके रसूल के कदमों से आगे बढ़ना है। सूरह हुजरात की पहली आयत में अल्लाह ताला कहते हैं कि ईमान वालों अल्लाह और उसके रसूल के कदमों से आगे ना बढ़ो। सुन लिए मानेंगे नहीं। अब देखिए तौरात का सफ़ा नहीं चल सकता तो आज किसी का फतवा या किसी इमाम का इज्तिहाद कैसे चल सकता है। वो अल्लाह के नेक चुने हुए बंदे थे, करोड़ों रहमतें होंगी उन पे अल्लाह की इंशाल्लाह। अल्लाह अपने किसी इमाम को, किसी बंदे को ज़ाया नहीं करेगा जिन्होंने अपनी ज़िंदगी इखलास के साथ अल्लाह के दीन के लिए लगाई, कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन उनको रुसवा करेगा कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ज़्यादा ठीक थे या इमाम शाफ़ी ठीक थे या इमाम मालिक गलत है या इमाम अहमद गलत है। अल्लाह तो उनको अजर देने वाला है, अल्लाह तो उनके दर्जे बुलंद करने वाला है, और आज उम्मत उन्हीं के नाम लेके लड़ रही है। अल्लाह ताला हमें सही राह दिखा दे और अपना ताल्लुक اللہ کے نبی کے ساتھ براہ راست جوڑنے والا بنا دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کوتاہی نے جنگ احد کی فتح کو شکست میں بدل دیا۔ حضرت برا بن عازب، یہاں صرف ان کا نام برا لکھا ہے لیکن ان کا پورا نام کیا تھا؟ برا بن عازب عین سے، فرماتے ہیں کہ احد کے روز مشرکوں سے ہمارا مقابلہ ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کی ایک جماعت پہاڑ کی چوٹی پر بٹھا دی اور عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر مقرر کرتے ہوئے فرمایا، تم ہمیں میدان جنگ میں خواہ غالب ہوتے دیکھو یا مغلوب ہوتے، اپنی جگہ سے ہرگز نہ ہٹنا اور نہ ہی ہماری مدد کو آنا۔ یعنی یہ ایسی گھاٹی تھی کہ یہ واحد جگہ تھی کہ جہاں سے دشمن حملہ کر سکتے تھے، تو اللہ کے نبی نے اس کو سیفٹی کے لیے وہاں ان کو کھڑا کیا، 50 لوگوں کو، یہاں سے نہیں ہلنا، کچھ بھی ہو جائے، پرندے ہمیں نوچ لیں، ہمیں، ہم جیتیں ہم ہاریں، تم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ ٹھیک ہے، اب نصیحت ہو گئی، آگے کیا ہوا؟ چنانچہ کافروں سے مقابلہ ہوا تو کافر بھاگ نکلے، حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ مشرکوں کی عورتیں پنڈلیوں سے کپڑا اٹھائے ہوئے پہاڑ پر بھاگی جا رہی ہیں، ان کی بازیبیں دکھائی دے رہی تھیں۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے ان کو سمجھایا کہ رسول اللہ تاکید کر گئے ہیں کہ اس جگہ سے نہ ہلنا، لہذا یہاں سے مت ہلو۔ تیر انداز نہ مانے، اپنی مرضی سے وہ جگہ چھوڑ دی، چنانچہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی اور 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ ایک غلطی، اللہ کے نبی کی ایک نافرمانی نے جیتی ہوئی فتح کو شکست میں بدل دیا۔ آج امت کیسے پنپ سکتی ہے؟ آج کیسے ابھرے امت؟ آج کیسے امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ عزت دے اور بلندیاں دے کہ جہاں ہر قدم کے اوپر اللہ کے نبی کے حکموں کو اور ان کے فرامین کو ہم چھوڑنے لگتے ہیں؟ صحابہ کرام سنت رسول کو ترک کرنا سراسر گمراہی سمجھتے تھے۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑ سکتا جس پر رسول اللہ عمل کیا کرتے تھے، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل میں سے کوئی چیز بھی چھوڑوں گا تو گمراہ ہو جاؤں گا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ابو بکر صدیق، کہ جو پہلے دن سے اللہ کے نبی کے ساتھ اسلام کے قافلے میں شریک تھے، وہ کہتے ہیں کہ اگر میں اللہ کے نبی کا کوئی ایک قول یا کوئی ایک فعل چھوڑ دوں تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ تو آج ہم اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، آپ کہیں جاتے ہیں نا تو آپ ایک ایگزٹ مس کرتے ہیں نا تو آپ منزل سے دور چلے جاتے ہیں۔ جو لوگ ڈرائیو کرتے ہیں وہ میری اس بات سے تصدیق کریں گے نا، ایک ایگزٹ صرف آپ کو منزل سے کتنا دور لے جاتا ہے۔ یہ جواب ہے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے، چھوٹی سی بات ہے، تھوڑی سی بات ہے، اب اس کی وجہ سے کیا کرتے ہو؟ چلو کیا ہوا، ایک چھوٹی سی بات ہی ہے نا، اللہ کے نبی کی نہیں مانی۔ نہیں، وہ آپ کو آپ کی منزل سے دور لے جائے گی، وہ صراط مستقیم سے بہت دور لے جائے گی آپ کو۔ اس لیے ایک ایک چیز پہ نظر رکھنی ہے۔ اگلی بات، ایسی بات یا عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، حدیث یا سنت کہہ کر لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی سزا جہنم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کر جھوٹ میری جانب منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ حضرت علی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، رسول اللہ نے فرمایا، جس نے میری جانب جھوٹی بات منسوب کی وہ آگ میں داخل ہوگا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص میری طرف ایسی بات منسوب کرے جو میں نے نہیں کہی وہ اپنی جگہ جہنم میں بنا لے۔ چوتھی دلیل، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ نے فرمایا، آخری زمانے میں دجال اور کذاب لوگ ایسی حدیثیں تمہارے پاس لائیں گے جو تم نے اور تمہارے اسلاف نے کبھی بھی نہ سنی ہوں گی، لہٰذا ان سے بچ کر رہو، کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دیں یا فتنے میں مبتلا نہ کر دیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آپ بھی سوچیں گے اور میرے بھی ذہن میں یہ بات آتی کہ کوئی ایسا کرتا ہے، اپنی مرضی سے کوئی بات اللہ کے نبی پہ منسوب کر دے؟ ایک شخص ہے، مجھے اس کا نام یاد نہیں، رافضی تھا، مرتے وقت اس نے اپنے ڈیتھ بیڈ پہ اس چیز کا اقرار کیا تھا कि मैंने अपने हाथों से कितनी, मुझे फिगर भी याद नहीं, कुछ याद नहीं, लेकिन बात कहीं लिखी हुई है मेरे पास, कि मैंने अपने हाथों से कितनी सैकड़ों हदीसें लिख के हदीस की किताब में शामिल की थी। ये एक नए अलग इशू है, इस पे भी कहीं आगे जाके बात होगी कि हदीस में ज़ईफ़ कहाँ से आ जाती है और दूसरी कहाँ से आती है। हल्का सा इसका तकाबुल लेने के लिए समझ लें कि दीन जब तक मक्का में था, फिर मदीना में आया, मदीना में महफूज था, उसके बाद सहाबा कराम के दौर में दीन फैलते फैलते हज़रत उमर के दौर के समझे बाद जब दीन पहुंचे ना कूफा में, कूफा शहर है, कहाँ का शहर है, इराक का शहर है, वहां जब पहुंचे ना तो वहां से फितने उठे थे उस वक्त, यानी ये जो शिया का जो राफसी जो फिरका है ये भी वहां हुआ। तो ये एक ऐसा दौर आया तारीख में कि जिसमें जाली हदीसें घड़ घड़ के दीन में डाली गई। तो आप एकदम सोचने लगेंगे कि अच्छा फिर इसका मतलब क्या, आज तो हदीस जो है वो पता नहीं काबिले तवज्जो ही नहीं, उसमें सही हो कि नहीं हो, ऐसा नहीं होता। अल्लाह का ये वादा है कि जब भी किसी ने हक में बातिल मिलाने की कोशिश की ना, तो अल्लाह ने उसके बाद फिर ऐसे लोग भेजे। ये जो मुहद्दिसीन का दौर है ना, ये उसके बाद का दौर है। इन्होंने इस तरह एक एक हदीस को चुन चुन के अलग किया जैसे आप आटे में से बाल निकालते हैं। हर दौर में ऐसा होता है। और आप देखिए कि अल्लाह की शान देखिए कि हर 100 साल के बाद एक मुजद्दद पैदा होता है। मारूफ बात है कि हर दौर में जब लोग दीन में कुछ ना कुछ कमियां बेशियां करते हैं ना, तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स को पेश कर देता है जो उस दीन के अंदर फिर लोगों के इजाफों को निकालता है। पिछले दौर में था, आज के दौर में आपको मालूम है कि नासिरुद्दीन अल्बानी रहमतुल्लाह अलैह, अगर आप उनसे मुतारिफ हैं या उनका नाम जानते हो, आज से कुछ 7-8-9 साल पहले उनका इंतकाल हुआ है, शायद इससे भी ज़्यादा। उनके बारे में ये बात मारूफ है कि इस सदी यानी इस सेंचुरी, इस 100 ईयर्स के वो मुजद्दद हैं। इनकी पूरी किताब है इस वक्त सही, यानी इन्होंने सही और ज़यीफ़ रिवायतों को अलग छांट दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह जो आप जिन नवाज़े नबी बुक पढ़ रहे हैं, इसके मेन पेज पे ही आप देखेंगे कि इनका नाम लिखा हुआ है, कि सारी रिवायतें जो ये इनकी तखरीज है, कि इसमें जो रिवायतें पेश की गई हैं वो अभी बिल्कुल जैसे अब ये कह लें कि लेटेस्ट रिसर्च के बाद उसके अंदर अगर कहीं भी कोई ज़ोफ़ वाली रिवायत नमाज़ों की किताबों में शामिल हो चुकी थी तो उसको उन्होंने निकाल दिया। अल्लाह कभी भी अपने नबी की बात को ऐसे नहीं पेश करेगा। और ये भी एक शुबा दिया जाता है कि अल्लाह के नबी की बातें हम क्या जानें और कैसे हो सकता है सही है कि नहीं, ये हमारी लाइल्मी है। खाना तो हम नहीं छोड़ते इस वजह से कि पता नहीं उसमें क्या डलाओ, क्या एंजाइम होंगे, क्या उसमें इंग्रेडिएंट्स होंगे, चलो भूखे ही रह लेते हैं, तो दीन से पीछे क्यों रहते हैं हम लोग। सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर नया तरीका तलाश करने वाला शख्स अल्लाह ताला के यहाँ सबसे ज़्यादा मग़ज़ूब है। मग़ज़ूब मैंने गज़ब का शिकार। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, तीन आदमी अल्लाह ताला के यहाँ गज़ब में है, यानी उस पर उन पर अल्लाह ताला का गुस्सा आता है, और वो कौन सा है? हरम शरीफ की हुरमत पामाल करने वाला, यानी हरम में जाके वहाँ कोई ऐसा काम करे कि जो वहाँ जायज़ नहीं। दूसरा, इस्लाम में रसूलुल्लाह का तरीका छोड़कर जाहिलियत का तरीका तलाश करने वाला। और तीसरा, किसी मुसलमान का नाहक खून तलब करने वाला ताकि इसका खून बहाए, यानी कत्ल करने वाला। तो इसमें भी आप देखें कि इस्लाम का तरीका छोड़कर जाहिलियत के तरीके अख्तियार करने, और ये तभी होता है जब बंदा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन को उस पर राजी नहीं होता। रसूल अकरम का हुक्म ना मानने पर दुनिया में इबरतनाक सज़ा। ये सब बड़े गौर से सुने, बल्कि बच्चियाँ भी। आज के दौर का मसला है इसलिए मैंने थोड़ा सा हाईलाइट किया इसको। क्या रिवायत है? हज़रत सलमा बिन अकवो रदी अल्लाहु अन्हो से रिवायत है कि इनके बाप ने इन्हें बताया कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह के पास बाएं हाथ यानी लेफ्ट हैंड से खाना खाया, तो आपने फरमाया अपने दाएं हाथ से खाओ। इस शख्स ने जवाब दिया मैं ऐसा नहीं कर सकता, यानी तकब्बुर की वजह से उसने कहा। आपने इरशाद फरमाया अच्छा अल्लाह करे तुझसे ऐसा ना हो सके। इस शख्स ने तकब्बुर की वजह से ये बात कही थी हालांकि कोई शरई उज़र नहीं था। रावी कहते हैं कि वो शख्स फिर उम्र भर तक अपना दायां हाथ मुंह तक नहीं उठा सका। ये सही मुस्लिम की रिवायत है, यानी अल्लाह ताला ने उसके हाथ को शल कर दिया। जैसे आज के दौर में आप कहें कि फालज है कि बाएं हाथ से खा रहा था और आपने जब मना किया तो उसने कहा मैं नहीं खा सकता, यानी रौनत से कहा, तो अल्लाह ने उसके हाथ को शल किया। और इस तरह के और भी कई वाक्यात हैं। सीरत की क्लास में हमने पढ़ा था जिस शख्स ने वो सहीफा लिखा था जिस पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और बनु हाशिम और बनु मुत्तलिब के साथ सोशल बाइकॉट था, तो उसका हाथ बाद में शल हो गया। अल्लाह ताला अपने नबी को कभी भी रुसवा नहीं करता, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इन बातों को सुन के मानने वाला बना दे। सुबहान रब्बी का रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।